शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों हम बात कर रहे हैं उन वाक्यों की, उन शब्दों की जिनका हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है। जी हां, परमपिता परमात्मा जब सीधा हमारे साथ संपर्क जोड़ते हैं तब वो महावाक्य एक मुरली की तरह हमारे कानों में पड़ते हैं और हम मंत्रमुग्ध होकर समझकर उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। हमारा ये प्रयास है अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में कि अपने सभी दर्शकों को, परिवार के सभी जो सदस्य हैं उन तक मुरली पहुंचाए। और इस प्रयास में आज भी हमारे साथ हैं एक सीनियर ब्रह्मा कुमारी आशा बहन जी, जिनके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो मानेसर में है उसको हेड कर रही हैं और एक खूबसूरत जो वो जगह है जहां बहुत शांति का एहसास होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आशा बहन। और जहां हमने मुरली के बारे में बात की थी कि वो ऐसे वाक्य हैं जो अपनी ओर आकर्षित करके मंत्रमुग्ध कर देते हैं और जीवन पर का सही रास्ता, सही मार्गदर्शन करते हैं। अगर हम मुरली की महत्ता की बात करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब मुरली सुन रहे होते हैं, सेंटर पर जब जाते हैं, तो जैसा कि आपने भी कहा था कि हर बार जब मुरली पढ़ी जाती है या सुनी जाती है एक नए रूप में सामने आती है। ऐसा क्या है, शब्द वही है, बातें वही है, तो ऐसा क्या है कि हर बार जो सूत्र मैं ढूंढ रही हूं मुझे वो मिल जाता है?
ये तो मैं भी नहीं कह सकती तो शिव बाबा की कमाल है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं और सुप्रीम टीचर भी हैं। तो स्टूडेंट को और बच्चे को क्या चाहिए ये तो उनको ही पता है। लेकिन ये वंडरफुल बात है, जो आपके दिल में होगा, क्वेश्चन होगा, या कभी आप कभी उदास हैं या कुछ हैं, तो उसका रिप्लाई आपको मुरली से मिल जाता है, जिससे आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, बात को फेस करने की क्षमता आ जाती है। कभी कोई बात होती है जिसको हम पूरा रीच से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, बहुत ही मजा आता है। इसलिए मुरली को हम कहते हैं कि ये अखुट खजानों की चाबी है।
बिल्कुल। और एक लिविंग जो रिलेशनशिप है हमारा, जो डायनामिक लिविंग रिलेशनशिप उस परमात्मा के साथ है, उसका आभास हमें मिल जाता है।
ये तो डेली जैसे शिव बाबा आपको पत्र लिख रहे हैं, डेली लेटर भेज रहे हैं। सोचो तो सही, ऐसा कोई पिता संसार में देखा, तीनों लोकों में देखा, जो डेली अपने बच्चों को पत्र लिखे, कोई नहीं है।
बिल्कुल।
तो मुरली को हम ऐसे भी कहते हैं कि इट इज लेटर फ्रॉम गॉड।
एग्जैक्ट। किसी भी रूप में हमें इसको हम ले सकते हैं, लेकिन इट्स अ डिवाइन फीलिंग, डिवाइन इंटरफेस, यू नो, लाइक। एंड एक्चुअली अगर हम देखते हैं तो जीवन के हर परिवर्तन में, हर मोड़ पर मुरली हमारा साथ देती है, क्योंकि मार्गदर्शन वही करती है। तो आज हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं?
बहुत करके हम सब एक बात से चिंतित रहते हैं कि हमारे मन के अंदर जो वेस्ट थॉट्स हैं वे नहीं आने चाहिए, क्योंकि वेस्ट थॉट्स के आने से बहुत कुछ नुकसान हम अपना कर लेते हैं, जो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। और उससे हमारे बुद्धि पर क्या असर पड़ता है, मन पर क्या असर पड़ता है, आज की जो मुरली है उसमें बाबा ने इन सब बातों को हाईलाइट किया है।
अच्छा, बट डू वी एवर रियलाइज ऑल्सो कि हम जो है वो वेस्ट थॉट्स जनरेट कर रहे हैं?
नेवर।
कभी हमसे, मुझे लगता है आपने जब अभी बात की तो मुझे लगा कि हमें तो शायद कभी एहसास ही नहीं हो पाता कि हाँ, हम ये जो थॉट्स जो भी आ रहे हैं ये वेस्ट थॉट्स हैं और ये कहीं ना कहीं मुझे मेरी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं।
एक्चुअली हम वेस्ट समझते भी नहीं थे, हम उसे नॉर्मल समझते थे। ये तो जब अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती है तब हमें एहसास होता है ये तो वेस्ट है, जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं, कोई हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं उन बातों में अपनी बुद्धि का, यहाँ तो टोटल वेस्ट है ना।
और समवेयर आई थिंक हमें लगता था कि हम थोड़ा थॉट जनरेट करते हैं, वो तो अपने आप आ जाते हैं,
अपने आप आते
हैं। अब इन विचारों का क्या करूं जो अपने आप आ रहे हैं?
तो क्या करना है वो आज की मुझे बता रहे।
बिल्कुल।
तो सुनते हैं
जी।
सब बच्चों के पुरुषार्थ को देख मुख्य दो कारण देखे, क्योंकि बाबा हम लोग जो एफर्ट्स करते हैं वो भी तो जानी जाननहार है, तो वो हमारे हर एफर्ट को जानते भी हैं, समझते भी हैं, और कहां हम रॉन्ग करते हैं इसका भी एहसास बाबा को होता है, जो हमें नहीं होता प्रॉबेबली। तो बाबा फिर हमें मुरली के माध्यम से बताते हैं। तो बाबा ने दो कारण देखे, एक तो वेस्ट अर्थात व्यर्थ गंवाना, दूसरा वेट अर्थात वजन ज्यादा.
दिस इज वेट मींस डब्ल्यू ई आई जी एच टी, नॉट डब्ल्यू ए आई टी.
और वो वेट आपके शरीर का नहीं परंतु आपके मन और बुद्धि का वेट है. जैसे आजकल के जमाने में शारीरिक रोगों का कारण वेट जास्ती है, सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है. जैसे शरीर में भारीपन होने कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे आत्मा के बोझ से आत्मिक रोग भी स्वतः पैदा हो जाते हैं. बहुत जबरदस्त बात कही गई है कि जैसे हम लोग एक्स्ट्रा अपने ऊपर रखेंगे बर्डन शारीरिक तौर पर, तो उसका हमको चुकाना पड़ेगा. कई बीमारियों के हम दास हो जाते हैं. तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे अगर आपके मन पर आत्मा पर एक्स्ट्रा बोझ होगा जो आपके काम का भी नहीं है, तो उसका नतीजा क्या होगा? भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां. कभी कभी आप सोचते हैं, दुनिया में लोग कहते हैं कि हिम्मत नहीं है, ये बात को मैं भूलना चाहती हूँ, भुला नहीं पा रही हूँ, मेरे में वो करेज नहीं है, सामना करने की शक्ति नहीं है, या मैं जल्दी से गुस्से में आ जाती हूँ, धैर्य की कमी है, आदि आदि कई प्रकार की बीमारियां हैं.
इनफैक्ट और एक सबसे बड़ी बीमारी जो है कि अपने मन से वो विचार हटता नहीं है,
हटता नहीं
जो
है.
बात मन में बैठ गई वो कितना भी कोशिश कर ले वो नहीं जाती, बार 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 बार. और यही शायद बाबा का कहना लग रहा है,
फिक्सेशन सी हो जाती है, डिप्रेशन होते हैं, वरीज होती हैं, टेंशन्स होते हैं. ये सब कारण क्या? जिन बातों से अपना मतलब नहीं उनको हम रखेंगे तो ये सब तो पैदा होगा ना. तो बाबा आगे समझा रहे हैं, सबसे ज्यादा वेट बढ़ने का कारण जैसे शारीरिक हिसाब से, ज्यादा वेट बढ़ने का कारण सड़ी हुई चीजें कहते हैं. वैसे यहां भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें,
जो गुजर गया, जो खत्म हो गया,
जो न सोचने की है अर्थात न खाने की है, ऐसे सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं. अथवा हर आत्माओं को कमियों व अवगुणों का स्वयं में धारण करना, इनको भी सड़ी हुई वस्तु कहेंगे. अब कोई बात हो गई ना, खत्म हो गई, लेकिन हम उस बात को जिंदा रखते हैं, बार बार याद करके बीती हुई बात को जिंदा बना करके रखेंगे तो टेंशन नहीं होगा, अवश्य होगा. इसको बाबा कहता है सड़ी हुई बात, पास्ट हो गई. कहीं कोई कचरा आपने डाल दिया, अब जाकर के फिर से उसको निकाल के लेके आओ, हाउ डू यू फील? इसी तरीके से पुरानी बातें पुरानी खत्म हो गई, अब उनको फिर से जिसको हम कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना.
बिल्कुल. अगर आज भी हम में से हर कोई तलाशने की कोशिश करे, जब हम खाली बैठे होते हैं या कुछ गुजर चुका होता है, वो बार 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 हमें हॉन्ट करता रहता है,
तो उसको खत्म करना. इसको बाबा कहते हैं ये आपका वेट भी बढ़ाता है अर्थात आत्मा पर बोझ डालता है, और वेस्टेज तो है ये. दूसरी बात एक और भी बाबा ने जो कही है, कोई भी संसार में संपूर्ण तो है नहीं, कमियां सब में, हमारे में भी हैं, हर एक के अंदर कमियां हैं, लेकिन हम औरों की कमियों को अवगुणों को चित्त पर रखें, ये कहां की समझदारी है? दूसरा व्यक्ति जिसके अंदर वो कमी है अवगुण है, वो तो उसको छोड़ने की कोशिश कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? वो फेंक रहा है और हम उस चीज को उठा के अपने पास रखना चाहते हैं, ये कहां की समझदारी है? तो बाबा कहते हैं इसलिए किसी भी प्रकार से अवगुणों को, कोई की कमियों को ना तो देखो और ना ही अपने मन के अंदर उसको स्थान दो, जिससे आपको नुकसान होता है। फिर बाबा आगे कहते हैं, दूसरी चीज, तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, अपनी तरफ आकर्षित भी बहुत करती है, न दिल होते भी थोड़ा सा खा लेते हैं। जितना ही आकर्षण वाली होती है उतना ही नुकसान वाली भी होती है। वैसे यहाँ फिर आकर्षण की चीजें हैं, एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना,
फैला देना। फिर
तली हुई वस्तु लगती तो अच्छी है ना, लेकिन नुकसान कितना करती है। तो बाबा कहते हैं इसी तरीके से आपका व्यर्थ बातों को सुनना और सुनाना, औरों को, अकेले भी नहीं उसको स्वीकार करते हो, औरों को भी स्वीकार कराते हो।
वो जंक फूड की बात है और जंक इन्फॉर्मेशन की बात है।
तो बाबा कहते हैं ये आकर्षित करती है परंतु व्यर्थ समाचार के लेन देन। अब मानो पानी है, पानी को आप बिलोएंगे आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। दूध को बिलोएंगे तो कुछ चीज मिल सकती है, लेकिन जो व्यर्थ है उसको बिलोने से आपको क्या मिलेगा?
उसमें एनर्जी का पूरा वेस्टेज हो रही है।
फर्दर बाबा कहते हैं रूप रू रूहान का होता है, लेन देन करने का होता है, लेकिन उसका रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि होती है। बात हम स्टार्ट करते हैं ना तो कैसे, नहीं नहीं मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ, मेरे को पता तो होना चाहिए ना, मेरे साथ वो काम करती है, मुझे इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, तुम थोड़ा सा मेरे को बताओ क्या बात है, मैं बताऊंगी नहीं किसी को, लेकिन अंदर में क्या है। शुरू करेंगे हम बड़े अच्छे हेल्दी नोट से और धीरे धीरे चले जाएंगे दूसरे रास्ते पर, जहां पर कि बाबा कहते जो अंदर अपनी घृणा की बात होती है ना वो उगल करके बाहर आती तो जरूर है ना। गॉसिपिंग है तो यही चीज ना, तो उससे तो अपना नुकसान है। इसको बाबा कहते हैं समझते ही कि मनोरंजन है। मेरी कोई बात करे तो मुझे कितना बुरा लगता है, और दूसरे की बात हम उछाल रहे हैं, दूसरे की बात हम कर रहे हैं, उसको बुरा नहीं लग रहा होगा। तो बाबा कहते समझते मनोरंजन है, लेकिन अनेकों के मन को रंज करते हैं, दुखी करते हैं। तो बाहर का रूप आकर्षण का है, लेकिन रिजल्ट गिराना है। ऐसे बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण वेट बढ़ जाता है। दुनिया भर की बातें अपने दिमाग में लेकर के बैठूंगी तो नुकसान तो होना ही है ना, तो बाबा तो इसलिए वेट पड़े।
इनफैक्ट अगर हम किसी के बारे में बोलते जाते हैं, बोल रहे होते हैं, बुराई कर रहे होते हैं, समवेयर हमारे को ये भी थॉट रहता है कि अगर उस तक ये बात पहुंच गई तब क्या होगा। तो वो एक बोझ जो है आत्मा पे वो पड़ता जाता है,
वो भी रहता है ना। अच्छा आपको कोई मैं बात बता देती हूँ, मैं कॉन्फिडेंस में बताना नहीं किसी को। तो हमको बाबा समझाया करते हैं, हमारी बड़ी दादियां हमको समझाती हैं कि देखो हर एक का कोई ना कोई कन वजीर होता है। मैं आपको बताऊंगी, आगे आपका कोई ना कोई एक जरूर होगा,
जरूर होगा, सबका एक 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 से होता हुआ
वो करते 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 जो है फैल जाता है। तो निमित्त कौन बना? निमित्त मैं बनी ना, जिसको फैलाने के निमित्त मैं बनी, तो उसका बोझ नहीं चढ़ेगा मेरे पर। कितनों का मन मैंने खराब किया, किसी के अंदर कोई बुराई है मेरे को पता है, चलो उसको मैं अपने तक सीमित रख करके फिनिश कर दूं ना, लेकिन मैं आपका भी दिल खराब करूं, फिर दूसरे का भी करूं, तीसरे का भी करूं, और सबके दिलों में उस आत्मा के प्रति इंप्रेशंस में खराब करूं, तो उसका बोझ नहीं चढ़ेगा मेरे पर 100%।
लेकिन हम क्यों करते हैं ये टेंडेंसी? ये जानते हुए भी आशा बहन कि समवेयर बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है कि हम सोचते हैं कि मनोरंजन हो रहा है, और अंदर से हम ये जान भी रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं हम, अंदर डीप विद इन वी ऑल नो कि दिस इज नॉट राइट, लेकिन स्टिल या तो संस्कार इतना हावी है क्या है कि ये स्वतः ही होता जाता है।
बहुत समय से हमें कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव पॉजिटिव करने की आदत नहीं रही है, और बहु काल का हमारा ये अभ्यास सहज रूप से जो आया जैसे आया करने का रहा है, तो इसलिए वो एकाएक निकल आता है। लेकिन जब हम अटेंशन देना शुरू कर देते हैं फिर इन चीजों के ऊपर कंट्रोल आता है। अगर मैं बात बोल भी रही हूं ना, अगर ध्यान पर आए नहीं ये तो पर चिंतन है मुझे नहीं करना है, देन आई स्टॉप इट। तो अटेंशन की बात है जो पहले नहीं था, लेकिन जब हमें समझ आ जाती है कि जैसे मैं हूं वैसे दूसरी आत्मा भी है, तो फिर हम लोग उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं ये चीज। इसलिए अटेंशन देना जरूरी है। एक्चुअली हम लोग सारे दिन में जो चार्ट लिखते हैं ना, उस चार्ट में भी हमको ये लिखना चाहिए कि मैंने आज इस तरीके का कोई काम तो नहीं किया,
कोई थॉट भी तो नहीं आया, थॉट जो है वो भी
थॉट का आना सुनना, चलो मैंने नहीं किया लेकिन मैंने किसी का सुना, तो वो भी तो गलत है ना। मेरा नहीं ऐड हुआ लेकिन मैंने सुन करके उसको बढ़ावा दिया, मैंने क्यों सुना? मुझे अपने आप को पूछना चाहिए एम आई ए गार्बेज बॉक्स?
नहीं, क्योंकि मुझे मन कर रहा था ना, क्योंकि मेरा संस्कार इतना हावी था मुझ पे
इस कारण से। सो आई मस्ट आस्क मायसेल्फ एम आई ए गार्बेज बॉक्स जिसके अंदर जिसको जो आया रद्दी डाल दे? नहीं। तो इसमें हमारी जो मातेश्वरी जी थी वो बहुत सुंदर सिखाती थी कि हमेशा देखो एक है साफ पानी की नदी और दूसरा है गंदा नाला। कोई खड़ा होके देखता है क्या इस गंदे नाले में क्या क्या जा रहा है? भागते हैं, नाक पे रुमाल रख के भागते हैं हम। ऐसे ही अगर किसी के जीवन में हमें ऐसी ऐसी चीजें बुराई दिखाई देती है, हम उसे क्यों लें? क्यों खड़े होकर हम उसको ऑब्जर्व करें, देखें, क्यों रुके? मूव ऑन। ठीक है, तो वो अपनी आदत हमें मिटानी पड़ेगी। तब बाबा आगे कहते हैं, ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण वेट बढ़ जाता है। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण दौड़ नहीं लगा सकेंगे, चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे, वैसे यहां भी पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकते
क्योंकि हम बोझ में दबे ही रहते हैं। बिल्कुल, हमारी फिजिकल कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है।
आप चाहते हैं ज्यादा मैं मेडिटेशन बहुत अच्छा करूं, कंसंट्रेशन मेरी अच्छी हो जाए, बहुत अच्छा एकाग्रचित हो जाऊं, कर नहीं सकेंगे क्योंकि ये सारा बोझ जो आ गया। हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते, वजन भारी वाले हर स्थान पर भी सेट नहीं हो पाते। वजन भारी वाले को चलते चलते एक तो रुकना पड़ता है, दूसरा किसी का सहारा लेना पड़ता है। इसी रीति पुरुषार्थ में चलते चलते थक जाते है ना, चलते चलते रुकना पड़ता है उनको सांस लेने के लिए, या फिर उनको चढ़ाने के लिए कोई का साथ सहारा लेना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही पुरुषार्थ करते स्पिरिचुअल एफर्ट्स के रास्ते में थक जाते हैं, इसलिए बाप भी कहते हैं वेट कम करो। शारीरिक वेट भी कम करो और दूसरा भी कम करो। इसका साधन है एक एक्सरसाइज, दूसरा है खान पान की परहेज। डॉक्टर्स भी दो ही बात कहते हैं कि एक्सरसाइज करो और खाने पीने पर अटेंशन,
और रेगुलर एक्सरसाइज कहा जाता है, हर रोज लगातार।
जो बुद्धि द्वारा कोई भी अशुभ वस्तु का सेवन करना अर्थात धारण करना, इसकी परहेज करो। ठीक है, कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है। जो सुनाया सड़ी हुई और तली हुई वस्तु का सेवन नहीं करो, दूसरा वेस्ट ना करो। क्यों वेस्ट करते हो? जो वस्तु जैसी मूल्यवान है उसको वैसे यूज न करना, इसको भी वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, आपके पास बहुत बढ़िया कोई चीज है लेकिन आप उसको उस रूप से यूज नहीं करते,
उसकी वैल्यू ही नहीं समझ पाए,
तो वेस्ट आ रही है ना। बाप द्वारा ये समय संगम युग का खजाना मिला है। संगम युग का सेकंड अनेक पद्मों की वैल्यू का है। संगम का एक एक सेकंड पद्मों की कमाई कराने वाला है। सेकंड का भी स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति पद्मों के मूल्य समान यूज नहीं किया, ये भी वेस्ट किया। मतलब अगर समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हम, वेस्ट कर रहे हैं।
यू हैव एन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली टू कन्वर्ट, उसको आप नहीं कर रहे हैं,
तो फिर आपके मिलियंस बिलियंस वो तो वेस्ट चले जाए। जैसा मूल्य है वैसे जमा नहीं किया। हर सेकंड में पद्मों की कमाई का वरदान ड्रामा में संगम के समय को ही मिला हुआ है। सत्युग में भी हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है, त्रेता में भी नहीं करते हैं, द्वापर में भी नहीं, कलयुग पता ही नहीं है, लेकिन संगम पर जब हमको पहचान मिलती है शिव बाबा की और उसके साथ साथ हमको पहचान मिलती है समय की, तब हम उस समय की कदर रखना शुरू करते हैं। औरों के प्रति भी यदि दान नहीं किया इसको भी व्यर्थ कहा जाएगा। ऐसे नहीं समझो कि कोई पाप तो किया ही नहीं, कोई भूल तो की नहीं, लेकिन समय का लाभ न लेना भी व्यर्थ
है।
यू कैन सी द डेप्थ कि अगर आप समय का प्रॉपर लाभ नहीं ले रहे हैं तो वो भी आपका व्यर्थ जा रहा है। सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दें, विशेषता देखते हुए कमजोरियों को न देखना न सुनना, ये अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। विशेषता को देखो, हम लोग कभी कभी ये एक्सरसाइज करते हैं, हम जो भी होते हैं इनमेट्स या कभी क्लास में आने वाले भाई बहन, हम उनको कहते हैं हर एक की विशेषता बताओ। तो जो व्यक्ति होता है उसको भी अपनी विशेषताओं का पता लगता है, और जो दूसरे होते हैं उनका भी पता लगता है कि उनकी अवगुण ग्राही दृष्टि ही है या विशेषता भी देखने वाले हैं।
और फिर वो जब भी वो दूसरा व्यक्ति उन्हें मिलेगा वो उसी विशेषता के साथ याद आएगा, क्योंकि उन्होंने खुद इंटरप्रेट किया होता है वो।
और मातेश्वरी जी के पास अगर कोई किसी प्रकार की कंप्लेन लेके जाता था ना, तो मातेश्वरी सदा कहती थी अच्छा मानो, मैं मानती हूं कि उसके अंदर ये भी है ये भी है, बहुत बुराई है, लेकिन ये बताओ उसकी विशेषता क्या है। तो मम्मा हमेशा उस तरफ ध्यान खिंचा देती थी जिस कारण से व्यक्ति का जो एटीट्यूड था, नजरिया था, वो बदल जाता था। तो बहुत समय से जो आदत पड़ी हुई है ना केवल रॉन्ग देखने की, वो बदल जाती है। देखते हुए भी कमजोरी को समा कर सहयोग देते रहे। कभी मान लो मैं देखती हूं भाई इसके अंदर तो ये कमजोरी है, मैं इसको अगर सहयोग दूंगी तो और नुकसान होगा, नहीं, कमजोरी को मैं समा लूं और उसको सहयोग दूं,
एक्सेप्ट कर लो उसकी कमजोरी है कि हाँ ये है।
उसके बाद रिजल्ट ये देखा जाता है, क्योंकि हमने समा लिया और सहयोग दिया ना, सहयोग देने से उसकी वो क्वालिटी बढ़ जाती है और जो नेगेटिव होती है वो उसकी खत्म हो जाती है। ये बाबा कहते हैं तिरस्कार नहीं करें, डोंट डिसरिस्पेक्ट, लेकिन तरस की भावना रखें। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनते हो, वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहम दिल बनो। अगर ऐसे रहम दिल बन गए तो क्या हो जाएगा, अनेक होते हुए भी एक बन जाए। सो ब्यूटिफुल, ठीक है, कितना ब्यूटिफुल है। वैसे भी लौकिक में देखो जो समझदार परिवार होते हैं, स्नेही परिवार होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की कमजोरी की बात समाकर एक दूसरे के सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम बालक। मेरा ही बेटा है, मैं सबको थोड़ी बताने जाऊंगी मेरे बेटे में ये कमी
है। कहा भी जाता है ना घर की बात घर में रहनी चाहिए, वहीं रह के उसको समा के बहुत सुंदर बात।
तो दूसरे को भी ऐसे ही देखो ना, अगर कोई परिवार में गरीब होता है उसको मदद दे करके भरपूर कर देते हैं, तो ये भी तो परिवार है। अगर कोई संस्कार के वश है तो क्या करना चाहिए? सहयोग देकर, हिम्मत बढ़ा करके, उल्लास में लाते हुए उसको अपना साथी बनाना चाहिए। फिर देखो अनेक होते भी एक हो जाएंगे। सो नाइस। बाबा कहते हैं सहयोग दो, उसकी बात को संभालो, उस तरफ अपनी दृष्टि डालो ही नहीं, जो विशेषता उसको बढ़ाओ तो उससे जो है सब कुछ होते हुए भी, अनेक होते हुए भी हम लोग एक हो जाएं।
और वो एक, वही एक जो है एकता का जो सूत्र है, या एक जो है वो परमात्मा के संतान होने का एहसास।
यस,
बिल्कुल।
मजा तो तब है ना जब परिवार में हम मेंबर्स हैं तो हम सबकी एक मत हो, एक सब कुछ हो, उसी में तो आनंद आता है ना। हर कोई अपना 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 रखे तो वो परिवार क्या हुआ।
बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो आज आशा बहन, अगर हम इसको कंप्लीट नटशेल में जानना चाहें तो वेस्ट जो है उसके ऊपर बाबा ने बहुत स्ट्रांगली ये कहा कि विचारों का वो बत, हम बात करें कि किस तरह से नटशेल में क्या कहेंगे हम अपने दर्शकों को।
ये कहें कि अपने आत्मा के ऊपर बोझ को बढ़ाने के साधन है पुरानी बीती हुई बातें या अवगुणों को देखना, तो वो हम लोगों को अपने आप के अंदर
नहीं आने चाहिए। बहुत सुंदर। तो आज आप हमारे साथ थे, मुरली को इस तरह से हमने जाना और खुद के जीवन में उतारने का एक प्रयत्न है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज बाबा की मुरली की अगर हम बात करते हैं तो बाबा ने हमसे कहा कि वेस्ट ना सिर्फ जीवन में बल्कि थॉट्स में भी नहीं आना चाहिए। खान पान में तो हमें वेस्ट या जंक को ना शामिल करना है, लेकिन वेस्ट हमें अपने थॉट्स, अपनी आत्मा में भी नहीं लाना है, क्योंकि वही वेट यानी कि वजन का कारण है। हम आत्मिक बोझ से दबे जाते हैं। और आज आशा बहन ने बहुत खूबसूरत बात यह की है कि हम हमेशा गलतियां देखते हैं अपने आसपास, जितने भी लोग होते हैं, कभी भी कोई परेशानी आती है, गलती हमेशा हमें दूसरे में नजर आती है। लेकिन गलतियों की बजाय अगर हम विशेषताओं की तरफ जाते हैं तो जिंदगी सचमुच बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो आइए आज एक प्रयास करते हैं, हमारे जीवन में जिससे भी हमें मुश्किल आ रही है या हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं, आज अपने आप से एक वादा करते हैं, एक कागज पर उनकी 5 विशेषताएं लिखते हैं और वो विशेषताएं लिखकर आप हमें भेजिए। और फिर हमें साथ में ये भी लिखकर भेजिएगा कि कैसा रहा आपका अनुभव, वो विशेषताएं उस व्यक्ति की जिनके साथ आपको मुश्किल आ रही थी, कहीं परेशानी आ रही थी, जब आपने विशेषताएं देखी तो क्या आपके एटीट्यूड में, आपकी वृत्ति में, आपका जो पूरा सोच है उनके प्रति, उसमें परिवर्तन आया? जहां बाबा का साथ मिल जाता है, जहां उस डिवाइन जो फोर्स है उसका साथ मिलता है, तो परिवर्तन मुश्किल नहीं रहता। कोई और बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी इसके देश विदेश में फैले सेंटर्स में आप जा सकते हैं, अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। नजदीक के सेंटर के बारे में जानकारी के लिए आप इन फोन नंबर्स पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वॉन्ट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन 09999744555।
अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज की बात बस यहीं तक, लेकिन ये सफर आगे यूं ही चलता रहेगा। आपसे होगी फिर मुलाकात। विदा लेते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। ओम।